नमस्कार भारत 27 अगस्त दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अमेरिका के वर्जीनिया में लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान दो पत्रकारों को गोली मारने वाले ने की आत्महत्या।
Flanagan was a former employee at WDBJ 7.
गुजरात में पटेल आंदोलन को लेकर चल रही हिंसा में 7 लोगों की मौत, लेकिन अब इस मांग पर उठने लगे हैं सवाल।
तो जो मुद्दा है उनका मुद्दा ही गलत है। पटेल गुजरात की सबसे समृद्ध जाति है, पटेल गुजरात में सबसे एजुकेशनली स्ट्रांग जाति है।
और भारत पाकिस्तान बातचीत पर क्या कहते हैं जमात इस्लामी के नेता।
हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक रियलिस्टिक अप्रोच और रवैया इख्तियार किया, ज़ाहिर है दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है।
सुनिएगा ये बातचीत, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में लाइव कवरेज के दौरान दो पत्रकारों की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति की भी मौत हो गई है। वेस्टरली फ्लैनेगन नाम के इस व्यक्ति ने पत्रकारों को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया था। कुछ ही देर बाद फ्लैनेगन की मौत हो गई। इससे पहले पुलिस ने इस व्यक्ति की कार का पीछा करके उसे पकड़ लिया था। अधिकारियों ने इसकी पहचान वेस्टरली फ्लैनेगन के रूप में की थी और ये व्यक्ति भी उसी टीवी चैनल का रिपोर्टर था जिस चैनल के पत्रकारों की हत्या हुई है। इस बीच फ्लैनेगन के एक संदेश से ऐसा पता चला है कि वो टेलीविजन चैनल के नस्ली भेदभाव से खफा था। उधर अमेरिका में एक जज ने 3 साल पहले कोलोराडो के एक सिनेमाघर में 12 लोगों को मारने वाले व्यक्ति को 12 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने कहा कि इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का हर दिन जेल में काटना होगा और उसके लिए पैरोल की कोई संभावना नहीं है। जेम्स होल्म्स नाम के इस व्यक्ति ने सिनेमाघर में उस वक्त अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी जब वहां बैटमैन फिल्म दिखाई जा रही थी। गुजरात में पटेल समुदाय के उग्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि बनासकांठा ज़िले में गढ़ पुलिस स्टेशन पर लोगों ने हमला किया था। अहमदाबाद के 9 थाना क्षेत्रों, सूरत के 2 थाना क्षेत्रों समेत राज्य की 17 जगहों पर एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सेना को बुला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
गुजरातना वाला भाइयों ने बहनों, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि में
गुजराती भाषा में नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। हिंसा को हथियार बनाना कतई ठीक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं होता। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। पटना के पुलिस अधीक्षक रेल प्रकाश नाथ मिश्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। इतालवी कोस्ट गार्ड के मुताबिक लीबिया के तटीय इलाके में रोकी गई एक नाव से करीब 50 लोग मृत मिले हैं। इस नौका में अप्रवासी भरे हुए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नौका से करीब 430 लोगों को जिंदा निकाला गया है। हाल के दिनों में लीबिया से आए हजारों अप्रवासी समुद्र में डूबकर मर गए हैं, जबकि कई हजार को जिंदा बचाया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि वो जिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं उसका सम्मान करें। बीबीसी समाचार।
तारीख 27 अगस्त दिन गुरुवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। अमेरिका के वर्जीनिया में कल एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। लाइव टीवी न्यूज के दौरान 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में हत्यारे ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वेस्टरली फ्लैगन ने एलिसन पार्कर और एडम वार्ड को गोली मार दी जब वे स्थानीय महिला उद्यमी का इंटरव्यू कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद फ्लैनेगन ने अपने आप को भी गोली मार दी। उस समय पुलिस उनका पीछा कर रही थी। पूरी जानकारी के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
वर्जीनिया में 2 पत्रकारों पर हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पीछा करके जब पकड़ा तो उसने खुद को गोली मार ली। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने इस व्यक्ति की पहचान वेस्टरली फ्लैनेगन के रूप में की और पता चला कि ये व्यक्ति खुद भी उसी टीवी चैनल का रिपोर्टर रह चुका था जिस चैनल के पत्रकारों की उसने हत्या की। बिल ओवरटन नाम के अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना से पहले फ्लैनिगन ने एक मीडिया संगठन से फैक्स के जरिए संपर्क साधा था।
फ्लैनिगन वाज अ फॉर्मर एम्प्लॉई एट WDBJ 7।
बिल ओवरटन कह रहे थे कि फ्लैनिगन WDBJ 7 चैनल का पूर्व कर्मचारी था। फ्लैनिगन ने न्यूयॉर्क स्थित एक मीडिया संगठन के पास कई पेजों का एक फैक्स भेजा था और हमारे जांचकर्ताओं के पास इसकी एक कॉपी भी है। निश्चित रूप से ये कागज मामले की जांच में काफी सहायक होंगे। WDBJ 7 न्यूज चैनल के अधिकारियों के अनुसार मोनेटा में एक लाइव साक्षात्कार के दौरान 24 वर्षीय रिपोर्टर एलिसन पार्कर और उनके कैमरा पर्सन 27 वर्षीय एडम वार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चैनल के मैनेजर जेफरी मार्क्स का कहना था कि एलिसन पार्कर और एडम वार्ड एक बड़े शॉपिंग सेंटर में एक मेहमान से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक 8 गोलियां चली, कैमरा जमीन पर गिर गया और लोग चीखने लगे।
While they were doing a live report at 6:45 this morning on News 7, WDBJ 7 morning,
लाइव प्रसारण के दौरान गोली चलने की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती थीं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। न्यूज चैनल के मुताबिक जिनका साक्षात्कार किया जा रहा था वो इस हमले में बच गए हैं। घटना पर वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकॉलिफ ने शोक जताया है और इस घटना को वर्जीनिया के लिए एक बड़ा हादसा बताया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि इस घटना के बाद देश में बंदूक रखने के कानून में संशोधन की जरूरत बढ़ गई है।
As you've heard me say in the past, this is another example of gun violence that...
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और अब बंदूक के कारण होने वाली हिंसा का एक और उदाहरण हमारे सामने है। ये अमरीका में लगातार बढ़ता जा रहा है और जब तक इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है तब तक इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अमरीकी राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट के शब्द। अमरीका में गोलीबारी की इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। काफी समय से वहां ये बहस चल रही है कि बंदूकों पर कानून और सख्त बनाए जाने चाहिए।
अमरीका में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान 2 टीवी पत्रकारों की गोली मारकर हत्या। गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। राजधानी अहमदाबाद के कई क्षेत्रों समेत राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन पटेल समुदाय को ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग का विरोध भी हो रहा है। राज्य की ओबीसी सूची में शामिल लोगों का कहना है कि समृद्ध और असरदार पटेल समुदाय को आरक्षण की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहले उन लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए जो अपनी रोजी रोटी के लिए पटेलों पर निर्भर हैं। सवाल आंदोलन पर भी खड़े हो रहे हैं। संदीप राय की रिपोर्ट।
गुजरात में पटेल या पाटीदार जाति के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में यह जाति बहुत प्रभावशाली मानी जाती है, जिसका व्यवसाय और सत्ता में अच्छा खासा रसूख है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले युवा नेता हार्दिक पटेल का कहना है कि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, हालांकि उन लोगों की कमी नहीं है जो उनकी इस बात से सहमत नहीं है। ओबीसी संयुक्त मंच के नेता अल्पेश ठाकुर कहते हैं कि यह मांग गलत है।
तो जो मुद्दा है उनका मुद्दा ही गलत है। पटेल गुजरात की सबसे समृद्ध जाति है, पटेल गुजरात में सबसे एजुकेशनली स्ट्रांग जाति है और एक और गुजरात की ऐसी पिछड़ी जाति है 54% ओबीसी, जिसका आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ।
इस आंदोलन के उभरने के बाद गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे अब तक विकास का प्रतीक माना जाता रहा है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि विकास का फायदा गांव तक तो पहुंचा ही नहीं, गांव की हालत अब भी पहले जैसी है।
गुजरात का विकास तो हुआ पर रोडों पे हुआ, अंदर का गुजरात, गांव का गुजरात देखिए, पिछड़ों का गुजरात, वहां तो पिछड़े पिछड़े ही है और सड़कों से उद्योगों से गुजरात का विकास नहीं होता।
पटेल समुदाय को आरक्षण का विरोध करने वालों की दलील है कि पहले उन लोगों की हालत के बारे में सोचा जाना चाहिए जो पटेल समुदाय के लोगों पर निर्भर हैं। गुजरात की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के MD मौलिक श्रीमाली आंदोलन को इसलिए भी गलत मान रहे हैं क्योंकि इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया गया है।
ओबीसी के अंदर पटेल कम्युनिटी को लाने की बात है तो उसमें सबसे पहला जो मैंडेटरी जो एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ की संविधान की, कि अगर किसी भी समुदाय को वहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन या तो SC ST किसी भी समुदाय में अपना राइट अगर करना है तो पहले मैंडेटरी ये फर्ज बनता है कि पहले सीधे ही ओबीसी जो कमीशन है वहां पर एप्लीकेशन करना है और अपने समुदाय की या तो अपने कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करके वहां पर डिमांड करना है।
जिस तरह से आंदोलन ने पिछले चंद दिनों में जोर पकड़ा है, उससे ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या सचमुच जन समुदाय इतना हताश हो चुका था कि बस 22 साल के युवा की मांग पर इस तरह से सड़कों पर निकल चला। अल्पेश ठाकुर इसके पीछे राजनीति और पैसे की ताकत का भी जिक्र करते हैं।
इसके पीछे कौन सी ताकत है, क्योंकि एक 23 साल का लड़का इतना वजूम तो नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि 1.5 महीना हुआ, 2 महीने पहले उसको कोई जानता भी नहीं था। पर मैं इतना तो पक्का मानता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है।
लंबे समय से पटेल समुदाय गुजरात की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से संगठित होकर उसने हुंकार भरी है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ताज्जुब नहीं है कि कई अहम मसलों पर अब तक चुप रहने वाले प्रधानमंत्री ने भी प्रतिक्रिया जताने में देर नहीं लगाई। गुजरात के चुनाव में अभी 2 साल की देरी है, लेकिन इस आंदोलन ने उसकी आहट अभी से तेज कर दी है। संदीप राय, BBC दिल्ली।
गुजरात में पटेलों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर अमेरिका में बड़ी संख्या में रहने वाले पटेल समुदाय की भी नजर है। सलीम रिजवी ने अमेरिका में रहने वाले पटेल समुदाय के कुछ लोगों से बात की और इस सारे मुद्दों पर उनकी राय जाननी चाहिए।
भारत से अमेरिका आने वाले पटेल समुदाय के लोग पिछले कई दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहे हैं और अमेरिका में मोटल या छोटे होटल के व्यापार में पटेल समुदाय के लोगों की तूती बोलती है। इसके अलावा अन्य व्यापार और व्यवसाय और डॉक्टर, इंजीनियर आदि पेशों में भी पटेल समुदाय के लोग मौजूद हैं। अमरीका में पटेल समुदाय के करीब 2 लाख लोग रहते हैं और उनमें से कई बहुत धनी और कामयाब भी हैं। गुजरात में तो पटेलों या पाटीदार जाति के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की मांग के साथ लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इस मुद्दे पर पटेल समुदाय में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। न्यूजर्सी में एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करने वाले जगदीश पटेल मानते हैं कि सभी को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए आरक्षण के प्रतिशत को घटा दिया जाना चाहिए।
बहुत सारा अन्याय हो रहा है, मेरे ख्याल से ये पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा अच्छा गेम है। ये मांग पटेल असल की नहीं है, ये मांग हर गुजराती में बोलते हैं उजड़िया को, पटेल शाह ब्राह्मीण क्षत्रिय ऑल दिस पीपल इन वाइट, तो उसमें कोई भी जाति में कोई भी हो सकता है, तो जो ऊपर या जाति वाले वो लोग मांग रहे हैं। अभी तो मेरे हिसाब से तो 90% फॉर ऑल पीपल, 10% फॉर पीपल फॉर लोअर कास्ट, एंड आई थिंक दैट्स ऑल पटेल शुड बी एक्सेप्ट।
लेकिन गुजरात में अब आरक्षण व्यवस्था के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है और पटेल समुदाय के उग्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में पटेल समुदाय के लोगों द्वारा ऐसे प्रदर्शनों में हिंसा का विरोध भी किया जा रहा है। अमेरिका में पिछले 34 वर्षों से रह रहे रमन पटेल कई मोटेल के मालिक हैं। गुजरात में हिंसा के बारे में रमन पटेल कहते हैं,
एजिटेशन से ये कुछ ये रास्ता अपनाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। बातचीत से हो सकता है, अगर रीजनेबिलिटी हो तो हो सकती है, और सामने वाले सुनने वाले भी वो लोग भी अपना दिमाग चेंज करें कि अनामत आप कॉलेज एडमिशन्स में इम्पोर्टेंट एजुकेशन फील्ड के अंदर अनामत का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए।
फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में रहने वाले पेशे से चिकित्सक डॉक्टर किरण पटेल ने सन 2005 में साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में पटेल सेंटर फॉर ग्लोबल सॉल्यूशंस की स्थापना की थी। आरक्षण के मामले में डॉक्टर किरण पटेल का मानना है कि जिन लोगों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो उन्हें मौके दिए जाने चाहिए।
सिर्फ आई एम बोर्न इन सर्टेन क्लास इसीलिए मुझे मिलना चाहिए और ये मेरा बर्थ राइट है, वही इज रॉन्ग। वेदर इज बोर्न इन ब्राह्मीन फैमिली और इन कैजुअल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इफ देयर फाइनेंशियल मीन आर प्रिवेंटिंग देम दोस अपॉर्चुनिटीज, not like a common average poor backward class schedule caste को कुछ फायदा हो रहा है, वो limited groups को ही हो रहा है, इसीलिए major changes होना चाहिए।
कुछ लोगों को ये भी चिंता है कि गुजरात में हिंसा के कारण विदेशी निवेश में भी कमी हो सकती है। एक बार फिर रमन पटेल,
देश के अंदर confidence बढ़ गया है बाहर लोगों का, वो लोग invest करने आना चाहते हैं, कितना ज्यादा employment create कर सकते हैं ये लोग investor लोग, और इस आंदोलन से वो बिगड़ जाएगी, किया कराया सब काम पर पानी धुल जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात के विभिन्न शहरों में पटेल समुदाय आंदोलन कर रहा है। इसका नेतृत्व 22 साल के हार्दिक पटेल कर रहे हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे के पहले दिन नियंत्रण रेखा के पास के इलाके में पहुंचे। राहुल पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गए और पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले। राहुल गांधी आज लद्दाख और दूसरे इलाकों में जाएंगे। राहुल की यात्रा पर श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
45 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुंछ में बालाकोट सेक्टर के उन सैनिकों के परिवार जन से मिले जो पिछले महीने सीमा पर क्रॉस फायरिंग के दौरान मारे गए थे। बाद में मिस्टर गांधी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सैनिक और पूर्व सैनिक दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे।
शायद पहली बार ये हुआ है कि जो बॉर्डर पे हमारे लड़ते हैं और मरते हैं वो दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पे अस्पताल में, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इसके बारे में एक शब्द नहीं कह सकते।
मिस्टर गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे सिस्टम को निष्क्रिय बना दिया है और भारत की विदेश नीति भी मोदी के हद से ज्यादा केंद्रीयकरण का शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि आसाम में नागा चरमपंथियों के एक गुट के साथ युद्ध विराम के दौरान भी मिस्टर मोदी ने मनमानी की और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी स्तर की बातचीत का एजेंडा तय करने में भी उन्होंने अपने अधिकारियों की बहुमूल्य सलाह को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो अपना काम समझते हैं, जानते हैं, करना जानते हैं। वो लोग फॉरेन सर्विस में हैं, वो लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, वो लोग सरकार में हैं, वो लोग सरकार के बाहर हैं। इस सरकार का प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार सोचती है कि ज्ञान सिर्फ मोदी जी में है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दावा किया कि देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी का कहना था कि ललित मोदी के काले धन को वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करवाने का वादा भी एक राजनीतिक स्टंट साबित हुआ है। राहुल गांधी कल कश्मीर आ रहे हैं। यहां वो श्रीनगर में युवकों से मिलने के अलावा पुलवामा में केसर उगाने वाले किसानों से भेंटवार्ता करेंगे। मिस्टर गांधी उत्तरी कश्मीर के सोपोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। उत्तरी कश्मीर में पहले ही सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त है क्योंकि आज दिन में उड़ी और रफियाबाद क्षेत्रों में सेना ने चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ों का दावा किया जिनमें एक चरमपंथी के मारे जाने की खबर है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
और चलिए अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार ने पटना में गुड गवर्नेंस पर होने वाले कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इससे पहले बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित बिहार सम्मान समारोह के दौरान दोनों प्रमुख नेता एक मंच पर दिखे थे। मद्रास उच्च न्यायालय में चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल से निलंबन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीसीसीआई को नोटिस जारी किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने आईपीएल 6 में भ्रष्टाचार मामले में जांच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए 2020 लीग से निलंबित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 2 बार की चैंपियन सुपर किंग्स ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हिमाचल प्रदेश के किसान, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले आज राज्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसानों की कथित अनदेखी के विरोध में सरकार के प्रति रोष जताया जाएगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की आज पश्चिमी बाल्कन देशों के नेताओं के साथ बैठक हो रही है जिसमें उन देशों के रास्ते यूरोपीय संघ जाने वाले प्रवासियों के मुद्दे पर बातचीत होगी।
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बातचीत रद्द हो जाने से दोनों देशों में निराशा है। बीबीसी हिंदी के रेडियो संपादक राजेश जोशी ने जमात इस्लामी के नेता सिराजुल हक से इस बारे में विस्तार से बात की। आइए सुनिए ये बातचीत।
नमस्कार, बीबीसी हिंदी के श्रोताओं से आज हम मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब से। हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये 2015 में हमारी मुलाकात हो रही है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, आप कैसे तस्वीर करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अगले आने वाले 10 सालों में?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर हिंदुस्तान की मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने एक रियलिस्टिक अप्रोच और रवैये इख्तियार किया और अपनी माजी से हट कर एक पुरअमन रीजनल सिचुएशन डेवलप करने के लिए तैयार हो गए तो ज़ाहिर है दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी बात है, मोदी साहब के आने के बाद कई बार उन्होंने बॉर्डर पे हमले किए, کئی بار انہوں نے بہت زیادہ اشتعال انگیز بیانات دیے، اب مذاکرات سے بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اس طرح رویے سے ریجن کو بدامنی کا خطرہ ہے۔
بدامنی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال، آپ کے لیے امن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
امن کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ تنازعات کا خاتمہ ہو،
خون خرابہ ختم ہو،
خون خرابہ ختم ہو، اور اس کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے، اور جہاں ایک چھوٹے سے خطے میں انہوں نے 800,000 فوج رکھی ہے، اور جہاں کے لوگ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جہاں ہزارہ نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں، اور وہاں کی ساری قیادت یا نظر بند ہے یا پابند سلاسل ہیں، اور روز وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، میرے خیال میں جدید دنیا اور ترقیات دنیا میں یہ سب کچھ ترقی کے راستے میں اور امن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔
میں ایک بار گیا تھا پاکستان، اور لاہور میں میری ملاقات ہوئی شہید مینار کے پاس۔ شہید مینار میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں میری ملاقات ہوئی، ینگ لڑکا تھا، نوجوان، اس نے کہا میں کشمیر میں لانچ کیا جانے والا ہوں، اور لانچ کیے جانے کا میں مطلب سمجھ نہیں پایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہاں بارڈر پار کروں گا، اور وہاں اگر ضروری ہوا تو میں شہادت دے دوں گا، خود کو ختم کر لوں گا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، کیا یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، بارڈر پہ تو انڈین فوج موجود ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے لانچ ہوتا ہے، بارڈر کراس کر لیتا ہے، تو میں کیسے مانوں کہ وہاں تو 800,000 فوج موجود ہے، تو 800,000 کے موجود ہوگی میں کوئی بارڈر کو کیسے کراس کر سکتا ہے؟ لیکن روز جو میڈیا پر خبریں لگتی ہیں سری نگر اور بہت سارے شہروں میں، وہ تو وہاں کے مقامی اسکول کے بچے ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، وہاں کے مائیں اور بہنیں ہیں، اور وہاں کے علی گیلانی صاحب جو 86 کی عمر کے بزرگ ہیں، آسیہ اندرابی صاحب جو ایک خاتون ہے، تو کیا ہندوستان کی جمہوریت اور نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک خاتون سے ان کو خطرہ ہے اور ایک 86 بزرگ سے ان کو خطرہ ہے؟
آپ کو واقعی یقین ہے کہ ہندوستان، جو کشمیریوں کی آزادی کی مانگ ہے، پاکستان سے ملنے کی مانگ ایک الگ ہے، آزادی کی مانگ ہے، اس کو تسلیم کرے گا؟ پاکستان اس کو تسلیم کرے گا؟ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ اس کا جو مل جانا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ تسلیم کریں گے؟
دیکھیں، جب انڈیا کے حکمرانوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں استصواب رائے کیا جائے، تو اقوام متحدہ نے اب تک کوئی اور فیصلہ تو نہیں کیا ہے،
تو آپ بھی آزادی کی بات کرتے ہیں؟
ایک اقوام متحدہ کے ایک حصے، ایک رکن کے طور پر ہندوستان کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان قراردادوں پر عمل کرانے میں تعاون کرے؟
بالکل صحیح ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کیا تسلیم کرتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو ہندوستان سے آزاد ہونا چاہیے، اور ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں یا ادھر،
وہ تو کہتے ہیں
ہندوستان کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتے ہیں۔
جماعت اسلامی کے نیتا سراج الحق سے بات کر رہے تھے راجیش جوشی۔ اور اب سمے ہے اخباروں کی سمیکچھا کا، سمیر آتمج مشر کے ساتھ۔
پنکج جی، آج اخباروں میں گجرات کی چرچا پورے سبھی ہر جگہ دکھائی پڑ رہی ہے، آپ بھی دیکھ ہی رہے ہیں میرے پاس جو بھی اخبار ہیں۔ گجرات میں ہنسا تیز، 7 کی موت، 7 جانے گئیں سینا تعینات، دینک جاگرن لکھ رہا ہے۔ گجرات میں دوسرے دن بھی بوال، 8 کی موت، دینک بھاسکر کی خبر ہے۔ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ 9 لوگوں کی موت ہوئی ہے گجرات ہنسا میں۔ اس طرح سے
سنکھیا الگ الگ ہے
اخباروں میں، اور لیکن یہ خبر سبھی اخباروں میں پرمکھتا سے چھائی ہوئی ہے۔ امر اجالا نے تھوڑا ہٹ کر کے اپنی لیڈ خبر بنایا ہے، انہتک سمبندھ، دھوکے، لالچ کی الجھی داستان بنا شینا ہتیا کانڈ، جو شینا مکھرجی، پیٹر مکھرجی،
اندرانی مکھرجی،
معاف کیجیے گا، اندرانی مکھرجی کل گرفتار ہوئی تھی، اس خبر کو، اور اس میں کیا اپنی پہلے بتایا تھا انہوں نے کہ ان کی
بہن ہے،
لیکن بعد میں بتایا جب پولیس نے پوچھ تاچھ کی کہ بیٹی ہیں، اس خبر کو اخباروں نے، سبھی اخباروں نے پرمکھتا دی ہے۔ اور
امر اجالا نے پہلی خبر
لیڈ اور تصویروں کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اس خبر کو۔ اگر دوسری بات کی جائے ہندوستان کی، تو ہندوستان اخبار سمپادکی اپنا لکھتا ہے اس آرکشن کے مدعے پر جو گجرات میں چل رہا ہے، कि आरक्षण का यह नया उतावलापन। अखबार के मुताबिक आज आरक्षण को लेकर जो कुंठाएं दिख रही हैं वे इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को आरक्षण मिल रहा है, बल्कि इसलिए है कि सबको रोजगार नहीं मिल रहा, सबके लिए रेवड़ी नहीं है, इसलिए ये रेवड़ियों की लूट में हिस्सा चाहते हैं जो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अखबार का कहना है। दैनिक भास्कर अखबार एक तो तस्वीरों के साथ गुजरात में जो कुछ कल हुआ उसकी तस्वीरें छापी हैं हिंसा के दौरान, और सेना जो है फ्लैग मार्च कर रही है। उसके बाद लिखता है कि जब गुजरात उबल रहा था तब केंद्र बिहार चुनाव का प्लान बना रहा था। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के गृह राज्य में हिंसा रोकने की सक्रियता देर से दिखी। जिस समय अहमदाबाद आंदोलनकारियों से भर गया था तब केंद्र बिहार चुनाव और दूसरे मुद्दों को लेकर व्यस्त था, और उसने गुजरात में क्या हो रहा था उस समय और दिल्ली में क्या हो रहा था उसका पूरा क्रमवार ब्यौरा दिया है समय देते हुए। और अमर उजाला की एक खबर है कि देश में 23 लाख लोगों ने छोड़ी LPG सब्सिडी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिविट अप की अपील थी उसका ये असर दिखाई पड़ा है। और अमर उजाला की ही एक और खबर है कि बेटी बचाने में हिंदुओं से आगे हैं मुसलमान। मुसलमानों में प्रति 1,000 पुरुष पर 936 से 951 पर पहुंचा महिलाओं का औसत, और अखबार ने उसी रिपोर्ट का हवाला दिया है जो जनगणना जारी हुई है धार्मिक आधार पर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, और अब चलते हैं खेल की दुनिया में।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय 800 मीटर महिला धावक टिंटू लूका ने 2016 रियो ओलंपिक्स का कोटा हासिल कर लिया है। बीजिंग में चल रही IAAF विश्व चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचने से टिंटू चूक गईं, लेकिन हीट में सातवें स्थान पर रहकर उन्होंने ओलंपिक का टिकट जरूर हासिल कर लिया। 26 साल की एशियाई चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी टिंटू ने हीट मुकाबलों में 2 मिनट और सेकंड का 0.95 समय लेकर इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि 2010 में वो 1 मिनट 59 सेकंड और 0.17 का समय निकाल चुकी हैं। इससे पहले टिंटू ने 2011 में दक्षिण कोरिया के दाएगू में हुए विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और वहीं बैडमिंटन में कल का दिन भारत के लिए निराशाजनक रहा। वियतनाम ओपन में भारतीय पुरुष खिलाड़ी गुरु साईदत्त, बी साई प्रणीत और अजय जयराम अपने अपने सिंगल्स मुकाबले हारकर दूसरे दौर से बाहर हो गए। गुरु साईदत्त को इंडोनेशिया के विशु यूली ने 21-16, 15-21, 21-15 से हराया। बी साईदत्त को भी इंडोनेशिया के ही मोहम्मद बायू से 21-19, 19-21, 21-16 से हार मिली। वहीं अजय जयराम को जापान के केंता निशिमोतो ने 21-15, 13-21, 21-18 से हराया। मिक्स डबल्स में जहां अपर्णा बालन और विष्णु अरुण की जोड़ी को पहले दौर में सफलता मिली, वहीं प्राजक्ता सावंत और अक्षय देवालकर को हारकर बाहर होना पड़ा। भारतीय टॉप सीड महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं। और अब चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ। बैंकॉक में चल रही एशियन चैंपियनशिप में भारत के 6 मुक्केबाजों को पहले ही दौर में बाई मिल गया। इसमें 56 किलो वर्ग के गत चैंपियन शिव थापा भी शामिल रहे। सिर्फ 75 किलो वर्ग के भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन को ही प्रतियोगिता में दूसरी वरीयता मिली है। पहले दौर में मनीष कौशिक को रिंग में उतरने का मौका मिला, जिन्होंने बांग्लादेश के एम हुसैन को 3-0 से पराजित किया। भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अक्टूबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के लिए खेल रहे हैं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही,
और कार्यक्रम के अंत में सुनिए प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में लाइव कवरेज के दौरान 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति की भी मौत हो गई है। वेस्टर ली फ्लैनेगन नाम के इस व्यक्ति ने पत्रकारों को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। अमेरिका में एक जज ने 3 साल पहले कोलोराडो के एक सिनेमाघर में 12 लोगों को मारने वाले व्यक्ति को 12 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुजरात में पटेल समुदाय के उग्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। इतालवी कोस्ट गार्ड के मुताबिक लीबिया के तटीय इलाके में रोकी गई एक नाव से करीब 50 लोग मृत मिले हैं। इस नौका में अप्रवासी लोग थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नौका से करीब 430 लोगों को जिंदा निकाला गया है। BBC समाचार।
और इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।